इसराइल एक रंगभेदी राज्य के रूप में, न कि लोकतंत्र। इसराइल को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में चित्रित करना लंबे समय से उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि का एक आधारशिला रहा है, जो इसके संसदीय तंत्र, चुनावों और कानूनी ढांचे में निहित है। हालांकि, विशेष रूप से फ़िलिस्तीनियों के प्रति इसकी नीतियों की बारीकी से जांच करने पर एक व्यवस्थित भेदभाव और अलगाव की संरचना सामने आती है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तुलना में रंगभेद, अपार्थेड के साथ अधिक संरेखित है। यह निबंध तर्क देता है कि इसराइल एक सच्चे लोकतंत्र के बजाय एक रंगभेदी राज्य के रूप में कार्य करता है, जो मानवाधिकार संगठनों, कानूनी ढांचों और हाल के राजनीतिक विकासों द्वारा उजागर किए गए व्यवस्थित भेदभाव, असहमति के दमन और यहूदी इसराइलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच अधिकारों में स्पष्ट असमानताओं के साक्ष्य पर आधारित है। व्यवस्थित भेदभाव और रंगभेद। 1973 के रंगभेद सम्मेलन के अनुसार, रंगभेद एक ऐसी संस्थागत नस्लीय अलगाव और भेदभाव की व्यवस्था है, जिसे एक नस्लीय समूह की दूसरे पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट, इसराइल का फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ रंगभेद, इस लेबल के लिए एक विस्तृत तर्क प्रस्तुत करती है, जिसमें तर्क दिया गया है कि इसराइल का फ़िलिस्तीनियों के साथ व्यवहार भेदभाव, संपत्ति छीनने और दमन के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था का गठन करता है, जो फ़िलिस्तीनियों की कीमत पर यहूदी इसराइलियों को प्राथमिकता देता है। रिपोर्ट में ऐसी नीतियों को रेखांकित किया गया है, जैसे भूमि अधिग्रहण, घरों का विध्वंस और पानी और बिजली जैसे संसाधनों तक सीमित पहुंच, जो इसराइल, वेस्ट बैंक और गाजा में फ़िलिस्तीनियों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, वेस्ट बैंक में यहूदी बसने वाले पूर्ण नागरिकता अधिकारों का आनंद लेते हैं, जबकि फ़िलिस्तीनी सैन्य कानून के तहत रहते हैं, जिन्हें बुनियादी स्वतंत्रताएं जैसे आवागमन और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा जाता है। यह दोहरा कानूनी तंत्र यहूदियों के लिए सिविल कानून और फ़िलिस्तीनियों के लिए सैन्य कानून दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की नस्लीय अलगाव को दर्शाता है, जहां अधिकार नस्ल के आधार पर आवंटित किए जाते थे। इसके अलावा, 2018 का राष्ट्र राज्य कानून, जो इसराइल को यहूदी लोगों का राष्ट्र राज्य घोषित करता है, स्पष्ट रूप से यहूदी पहचान को सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों पर प्राथमिकता देता है। यह कानून अरबी को आधिकारिक भाषा से हटा देता है और यहूदी बस्तियों को राष्ट्रीय मूल्य के रूप में बढ़ावा देता है, जिससे इसराइल की 20% आबादी जो अरब है, प्रभावी रूप से हाशिए पर चली जाती है। ऐसी नीतियां समान नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर करती हैं, क्योंकि वे कानून में यहूदी सर्वोच्चता को स्थापित करती हैं, जो रंगभेदी व्यवस्थाओं की एक विशेषता है, जहां एक समूह के अधिकार जातीयता या नस्ल के आधार पर दूसरे से अधिक होते हैं। असहमति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का दमन। एक कार्यशील लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समान राजनीतिक भागीदारी की गारंटी देता है, लेकिन इसराइल का फ़िलिस्तीनी नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार एक स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2022 की ब्रीफिंग, निर्वाचित लेकिन प्रतिबंधित, इसराइल की क्नेसेट में फ़िलिस्तीनी सांसदों के लिए सिकुड़ती जगह, यह दस्तावेज करती है कि कैसे फ़िलिस्तीनी क्नेसेट सदस्य एमकेस भेदभावपूर्ण नियमों का सामना करते हैं, जो उनके निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए, फ़िलिस्तीनी एमकेस द्वारा प्रस्तावित विधेयक, जो उनकी समुदाय के अधिकारों को संबोधित करते हैं, चर्चा से पहले योग्य घोषित कर दिए गए हैं, और 2016 का निष्कासन कानून क्नेसेट को नस्लवाद के लिए उकसाने या सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करने के लिए एमकेस को हटाने की अनुमति देता है, एक प्रावधान जो अक्सर अरब एमकेस को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एमके उफर कासिब का मामला, जिन्हें 2024 में दक्षिण अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले का समर्थन करने के लिए निष्कासन का सामना करना पड़ा, इस दमन का उदाहरण है। हालांकि निष्कासन की कोशिश विफल रही, कासिब को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, एक ऐसा कदम जिसे आलोचकों का कहना है कि असहमति को चुप कराने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित था। अरब एमकेस का निलंबन एक बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न रहा है, जो हदाशताल और राम जैसे अरब दलों को असमान रूप से प्रभावित करता है। 2023 में आयदा थॉमस लिमन और इमान खतीब यासिन को गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करने के लिए क्रमशः 2 महीने और 1 महीने के लिए निलंबित किया गया। ऐतिहासिक मामले जैसे हनीम ज़ोआबी के बार बार निलंबन, उदाहरण के लिए 2014 में फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करने वाले बयानों के लिए 6 महीने, इस प्रवृत्ति को और स्पष्ट करते हैं। ये कार्रवाइयां उन यहूदी एमकेस के लिए जवाबदेही की कमी के साथ तीव्र विरोधाभास में हैं, जो उकसावे में शामिल होते हैं, जैसे 2023 के यरूशलम ध्वज मार्च के दौरान, जहां प्रतिभागियों ने अरबों को मारो के नारे लगाए बिना समान परिणामों का सामना किए। यह दोहरा मापदंड अरब एमकेस को उनके भाषण के लिए दंडित करना, जबकि यहूदी राष्ट्रवादियों द्वारा उकसावे को सहन करना, कानून के तहत समान व्यवहार के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर करता है और एक ऐसी व्यवस्था का सुझाव देता है, जो अल्पसंख्यक आवाजों को दबाने के लिए डिजाइन की गई है, जो लोकतंत्र के बजाय रंगभेद की विशेषता है। अधिकारों और जीवन स्थितियों में असमानताएं। इजरायली नियंत्रण के तहत फलस्तीनियों के जीवित अनुभव लोकतंत्र के दावे को और कमजोर करते हैं। गाजा में, जैसा कि 25 मई 2025 को UNRWA के पोस्ट में उजागर किया गया, नाकाबंदी और बार बार की सैन्य कार्रवाइयों ने मानवीय संकट पैदा किया है, जिसने संयुक्त राष्ट्र ने और अधिक आपदा को रोकने के लिए प्रतिदिन 500-600 सहायता ट्रकों की मांग की है। गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर हमलों, विशेष रूप से बाल चिकित्सा और नवजात देखभाल को जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन के रूप में दस्तावेज करती है, जो संभावित रूप से मानवता के खिलाफ अपराधों के बराबर हो सकता है। ये स्थितियाँ प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के जानबूझकर किए गए विनाश के साथ मिलकर फलस्तीनियों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जो यहूदी इसराइलियों के लिए उपलब्ध अधिकारों और सेवाओं के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा करती हैं। इसराइल के भीतर फलस्तीनी नागरिकों को आवास, शिक्षा और रोजगार में व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एमनेस्टी द्वारा उल्लिखित घरों के विध्वंस की प्रथा विस्थापन का एक प्रमुख तंत्र है, जिसमें फलस्तीनी परिवारों को निर्माण परमिट से वंचित किया जाता है, जबकि यहूदी बस्तियां विस्तार करती हैं। पूर्वी यरूशलम में फलस्तीनियों को अक्सर निवास के अधिकारों से वंचित किया जाता है, जबकि यहूदी बसने वालों को तरजीही व्यवहार दिया जाता है। ये असमानताएं संयोगवश नहीं है, बल्कि एक कानूनी और राजनीतिक ढांचे में निहित है, जो यहूदी प्रभुत्व को प्राथमिकता देता है, जो रंगभेद के लक्ष्य को दर्शाता है कि अलगाव और असमानता के माध्यम से नस्लीय नियंत्रण को बनाए रखा जाए। प्रतिवाद और उनका खंडन। इसराइल की लोकतांत्रिक स्थिति के समर्थक अक्सर इसके चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और नेसेट में अरब एमकेस की उपस्थिति को लोकतंत्र के सबूत के रूप में इंगित करते हैं। हालांकि उपरोक्त व्यवस्थित असमानताएं और दमन इन तत्वों को कमजोर करते हैं। चुनाव हालांकि नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, तब समान राजनीतिक शक्ति में तब्दील नहीं होते, जब अरब एमकेस को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और उनके समुदायों को हाशिए पर रखा जाता है। न्यायपालिका हालांकि कभी कभार फलस्तीनी अधिकारों के पक्ष में फैसले देती है, ने राष्ट्र राज्य कानून और निष्कासन कानून जैसे कानूनों को बरकरार रखा है, जो यहूदी सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। इसके अलावा अरब एमकेस की उपस्थिति तब अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व के बराबर नहीं होती, जब उन्हें उनके राजनीतिक विचारों के लिए नियमित रूप से निशाना बनाया जाता है, जैसा कि निलंबन और निष्कासन के प्रयासों से स्पष्ट है। एक और तर्क यह है कि इसराइल की कार्रवाइयां सुरक्षा खतरों, जैसे फलस्तीनी आतंकवाद, के जवाब में हैं। हालांकि सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं, वे फलस्तीनियों पर थोपी गई व्यापक भेदभाव और सामूहिक दंड को उचित नहीं ठहराती। गाजा की नाकाबंदी, वेस्ट बैंक का सैन्य कब्जा और इसराइल के भीतर असहमति का दमन लक्षित सुरक्षा उपायों से परे जाता है, एक ऐसी नियंत्रण व्यवस्था बनाता है जो जातीयता के आधार पर एक समूह को दूसरे पर प्राथमिकता देता है, रंगभेद की एक परिभाषित विशेषता, न कि खतरों का लोकतांत्रिक जवाब। निष्कर्ष। इसराइल की नीतियां और प्रथाएं व्यवस्थित भेदभाव, असहमति का दमन और अधिकारों में स्पष्ट असमानताएं लोकतंत्र की तुलना में रंगभेद के साथ अधिक संरेखित हैं। कानूनी ढांचा, जैसा कि राष्ट्र राज्य कानून और निष्कासन कानून में देखा गया है, समान नागरिकता पर यहूदी पहचान को प्राथमिकता देता है, जबकि फलस्तीनी एमकेज और नागरिकों के साथ व्यवहार बहिष्कार और दमन का एक पैटर्न दर्शाता है। फलस्तीनियों की जीवित वास्तविकता, चाहे गाजा में, वेस्ट बैंक में या इसराइल के भीतर, अलगाव और अभाव की है, जो यहूदी इसराइलियों को दिए गए अधिकारों के साथ तीव्र विरोधाभास में है। ये तत्व, जो मानवाधिकार संगठनों द्वारा दस्तावेज किए गए और हाल की घटनाओं द्वारा समर्थित हैं, इसराइल को एक लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करने की कथा को चुनौती देते हैं और इसके बजाय एक रंगभेदी राज्य की तस्वीर पेश करते हैं, जहां व्यवस्थित असमानता और प्रभुत्व राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। सच्चा लोकतंत्र सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की मांग करता है, जो सिद्धांत इसराइल की वर्तमान व्यवस्था फलस्तीनियों के लिए बनाए रखने में विफल रहती है।